તારીખ 15/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 133 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે તથા અવાજ ધીમો છે.
500 નંબર કા પત્ર ચલતા હૈ. ક્યા બાત ચલ રહી થી કે જીવ અનંત કાળ સે જન્મ મરણ કરકે ભ્રમણ કર રહા હૈ, વો પરિભ્રમણ ચાલુ રહા હૈ, इसका कोई एक मूल कारण है, कोई एक ऐसी भूल हुई जिसकी जिसको यहाँ बीज भूल गई है, इस कारण से उनका परिभ्रमण मिटा नहीं. ऐसा विचार भगवान महावीर स्वामी को आया था. वो भी कैसे आया था कि अत्यंत एकाग्रपणे से सद्बोध के वर्धमान परिणाम से विचार करते करते ये बात आई थी. बहुत अत्यंत एकाग्रता से वो बात निकली है और सद्बोध के परिणाम को वर्धमान करते हुए ये बात निकली है. ये बीजभूत भूल का सर्वप्रथम विचार करना चाहिए जीव को. दूसरे अनेक प्रकार के दोष तो होते हैं, लेकिन ये बीजभूत भूल का विचार करना सर्वप्रथम जरूरी है, यानी उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, उसकी मुख्यता आनी चाहिए कि जिसका विचार करने से बाकी सर्व भूल का विचार यथार्थ प्रकार से हो सकता है. बाकी के विचार यथार्थ प्रकार से होने के लिए इसका विचार होना जरूरी है सबसे पहले. और जिस भूल के मिटने से और सब भूलें भी मिट जाती हैं, ये भूल मिटने से दूसरी भूलें भी मिट जाती हैं. कोई जीव कदापि अनेक प्रकार की भूल का विचार करके इस भूल से छूटना चाहता है तो भी यह कर्तव्य है. अगर कोई जीव अनेक प्रकार की भूल करता है और उस भूल से मुक्त होने का चाहता है तो वो ठीक है, कर्तव्य है. भूल अपना दोष मिटाना, भूल मिटाना, वो तो ठीक ही बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है या कोई विरोध नहीं है. और ऐसे अनेक भूल से छूटने की इच्छा और ऐसी अनेक भूलों से छूटने की इच्छा मूल भूल से छूटने से सहजे कारण बनती है. तो ऐसे अनेक भूल से छूटने की इच्छा है, यहां से लेकर के भूल से जिसको छूटना है उनका ध्यान जाएगा कि कोई ऐसी मूलभूत भूल से हमको छूटना चाहिए. क्या कहते हैं कि जिसको दोष से मुक्त होना है, सभी दोषों से या किसी भी प्रकार के दोषों से, जो भी दोष अपने में होता हो उसे छूटना है, वो कर्तव्य है. और ऐसे भूल से छूटने के इच्छा उनकी जो होती है वो इच्छा उनको कहाँ ले जाती है, मूल भूल कौन सी हो रही है वो इच्छा उनको वहां ले जाती है. तो क्या कहा कि दोष से भूल से छूटने का विचार अच्छा ही है और ये होना ही चाहिए तो आगे जाकर के बीजभूत भूल तक पहुंचेगा. उसमें जो नीति विषय एक बात एक खड़ी होती है वो होती है कि जीव का स्वलक्ष्य होता है, अपना दोष मिटाना है, अपनी भूल मिटानी है, उसमें उसका लक्ष्य बदलता है. थोड़ा और विचार करें इस विषय में. कि जीव धर्म साधन करता है अनेक प्रकार का, अपने अपने संप्रदाय में सब करते हैं, ये थोड़े बहुत कुछ न कुछ करते हैं, तो जो भी साधन करते हैं वो स्वलक्ष्य से होता है या परलक्ष्य से होता है, ये ध्यान करीब करीब लोगों का नहीं जाता। और बहुत परलक्ष्य से सब साधन किया है और करने में आ रहा है, इसलिए इस साधन करते हुए भी जीव की मुक्ति नहीं होती। ये जो बात है ओवरसाइट जाती है, ध्यान बार जाती है, लक्ष्य बार जाती है, ये बात, ये अपना दोष मिटाना, अपनी भूल मिटाने वाली जो कार्य पद्धति है उसमें ये बात कभी नहीं बनती। परलक्ष्य से ये बात नहीं हो सकती, ये स्वलक्ष्य से ही ये बात हो सकती है। ये कृपाणु देव के इस वचनामृत में से वो बात निकलती है। अब देखो, अब पढ़िए तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऐसी अनेक भूल से छूटने की इच्छा मूल भूल से छूटने का सहज कारण बनता है। क्यों? कि जिसको अपने दोषों से छूटना है, अपनी भूल मिटानी है, बार बार उस पर उनका क्यों विचार आता है कि मुझे मेरी भूल मिटानी है, कि उनको स्वलक्ष्य हुआ है, तो वो वहां तक जाएगा कि मूलभूत मूल कोई ऐसी भूल मेरी हो रही होगी कि जिस कारण से अनेक प्रकार की भूल की परंपरा चालू रहती है मेरे परिणाम में, तो उस तरह से उनका ध्यान सभी भूलों का मूल जो है वहां तक जाएगा और वो भूलों मिटाएगा जी। ये स्वलक्ष्य से वो फायदा होता है। बहुत सुंदर बात किया है इस जगह पर। एक सिद्धांत सूत्र गुरुदेव ने दिया है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। इसके गर्भ में सब बात पड़ी है कि जिसको पूर्ण शुद्ध होना है उसको कौन सी भूल रखना है, कौन सा दोष रखना है, कि उनको एक मामूली थोड़ा सा भी दोष उनको नहीं चाहिए। ये दोष को कलंक समझता है, अपने आप मलिनता समझता है, तो जिसको स्वच्छता प्रिय है वो थोड़ी भी मलिनता क्यों चाहेगा। तो एकदम स्वच्छ कपड़ा पहनता है उसको क्या थोड़ा दाग, कोई वांधा नहीं, थोड़ा दाग है नहीं, ऐसा चलाएगा कि नहीं चाहिए। तो यहां से अपने पर लक्ष्य रहता है कि मेरे में क्या हो रहा है, मेरी भूल कहां हो रही है, मूल का मूलभूत भूल कौन सी हो रही है, ये मुझे मिटानी चाहिए, ये बात आए बिना नहीं रहेगी। इस सिद्धांत में बहुत सी बात रही है। इस स्टेज में अगर कोई मुमुक्षु जीव आता है पूर्णता का लक्ष्य वाला, और जिसकी मुमुक्षुता की शुरुआत होती है, इस शुरुआत में बड़ा फायदा ये होता है कि उसका लक्ष्य आ जाता है, उसका परलक्ष्य खुल जाता है, और ये स्वलक्ष्य होना यही अनादि से धर्म साधन करने में रह गया। स्वलक्ष्य प्रवृत्ति धर्म की नहीं रही, परलक्ष्य रही। तो ये बात आएगी कि लोग किस नजर से मुझे देखते हैं, मैं इतना इतना करता हूं तो लोग किस नजर से मुझे देखते हैं, ये बात आए बिना रहेगी नहीं। तो प्रवृत्ति अच्छी होगी, ठीक होगी, सही होगी, तो भी ये लोक संज्ञा वाला बड़ा दुर्गुण और जहर वो पी जाएगा। और यही सारे लोक का परिभ्रमण का कारण लोक संज्ञा है। जीव सारे लोक में जन्म मरण परिभ्रमण कर रहा है, इसका मूल कारण तो लोक संज्ञा है कि उसकी नजर लोक के प्रति है, तो लोक में जाएगा, वो कहां भ्रमण करेगा, भाव दृष्टि लोक में जाती है तो परिभ्रमण भी लोक में ही होगा, ये इसका फल है। बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है यहां से। और ये जो बीज बुद्ध भूल है वो वही है जो कृपालुद्र ने खोली नहीं है कि जीव को सत्पुरुष के सत्संग का मूल्य समझ में नहीं आया। अगर सत्पुरुष के सत्संग का मूल्य समझ में आ जाए ना तो उसको छोड़ेगा नहीं, पर जो सत्पुरुष का संग छोड़ेगा ना तो फिर उनका दोष मिटता ही जाएगा, मिटता ही जाएगा। उनको बताएंगे वो, या तो स्वलक्ष्य से अपने आप मालूम पड़ेगा, वो संग से सत्संग से उसको समझना मिल जाएगा कि अभी ये बात रह जाती है, अभी ऐसी भूल होती है, अभी वैसी भूल होती है। मिटाते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, मिटाते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, सभी भूल उसकी छूटेगी। तो ये बात भूल से उनको समझ में नहीं आई। शास्त्र पढ़ा, शास्त्र में वो बात है, फिर भी अपना वो बीजभूत भूल पर ध्यान नहीं गया कभी। जब से वो ध्यान जाता है तब से उसकी पूरी लाइन बदल जाती है। अब और भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि शास्त्र में जो ज्ञान प्रकट किया है, यानी शास्त्र में जो ज्ञान प्रसिद्ध किया है, यह ज्ञान दो प्रकार के विचारने योग्य है। उसका दो प्रकार है या दो विभाग है, शास्त्र ज्ञान के दो विभाग हैं। एक प्रकार उपदेश का और दूसरा प्रकार सिद्धांत का। शास्त्र ज्ञान में एक उपदेश ज्ञान है और एक सिद्धांत ज्ञान है, तो दोनों ज्ञान का विषय क्या क्या है वो बता रहे हैं। कि उपदेश ज्ञान का विषय क्या है कि जन्म मरण आदि क्लेश वाला यह संसार को का त्याग करना चाहिए। जिस जन्म मरण जिसमें हो रहा है और जीव जिसमें दुखी हो रहा है, इस दुखमय संसार को का अभाव करना चाहिए। तो संसार का अभाव करने का जो उपदेश जिसमें है उसको कहते हैं उपदेश ज्ञान। तो उसमें वो बात आता है कि संसार का अभाव करना है तो संसार के कारणभूत दोषों का अभाव भी करना चाहिए। अनित्य पदार्थ में विवेकी को रुचि करने होती नहीं। जो विवेकी जन है वो अनित्य पदार्थ में रुचि करते नहीं। अनित्य पदार्थ कौन कौन से हैं कि जितना भी संयोग है ये सब अनित्य है। ये शरीर भी अनित्य है, जो जीव के साथ बहुत समीप है क्षेत्र से, ऐसा शरीर भी अनित्य है। तो दूसरे जो क्षेत्र से दूर है, जिसके साथ हमेशा रहना हो ही नहीं सकता है, शरीर तो 24 घंटा साथ में रहता है, जब दूसरे पदार्थ को 24 घंटा साथ में नहीं रह सकते तो वो तो अनित्य है ही, समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनित्य पदार्थ में विवेकी को रुचि करनी होती नहीं, यानी विवेकी जन उसमें रुचि करता नहीं, और जो रुचि करता है वो विवेकी नहीं है। ये तो इसमें से फलित होता है कि नहीं होता है? सारी दुनिया क्या करती है, शरीर से लेकर के सभी अनित्य संयोग में रुचि रखते हैं, तो उनको ज्ञानी कहते हैं कि वो विवेकी नहीं है। क्यों विवेकी नहीं है? कि ऐसे अनित्य पदार्थ की रुचि करने से इसका फल तो दुखी आएगा, दुखी हो जाएगा। जैसे हमको शरीर बहुत प्रिय है, इसलिए उसकी सार संभाल, उसका जतन सब कुछ करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, उसकी अनुकूलताएं सब प्रकार की मेंटेन करते हैं, फिर दुखी क्यों होते हैं? कि उसको छोड़ने की बारी आती है। अनित्य पदार्थ में नित्यता स्थापित करके रुचि करते हैं, रुचि करते हैं तो नित्यता का स्थापित होता है और पदार्थ का संयोग अनित्य है, तो उसको लगता है अरे मेरा शरीर मुझे दगा दे रहा है, कल कुछ नहीं था आज कुछ हो गया। ये क्यों लगता है, उसमें दुख क्यों होता है? कि रुचि क्या है तो उसमें दुख हुए बिना रहेगा, फिर रखने का प्रयत्न करेगा। नित्यता स्थापित है तो नित्य रहे ऐसा प्रयास करेगा, धमाल करेगा, इधर से दवाई मंगाओ, इधर से डॉक्टर को मंगाओ, इधर वो करो वो करो वो करो, बचाओ बचाओ। लेकिन अशरण भूत इस संसार में कोई बचाने वाला मिलता नहीं है।
एक मिलता है
संसार में, बात है ये संसारी है क्या? तो संसार में नहीं मिलता ने, जिसमें इसकी रुचि है ऐसों में रुचि है तो उसको बचा नहीं सकता, परिवार में रुचि है तो उनको बचा नहीं सकता, इसके मित्र मंडल स्नेही स्वजन जो भी है डॉक्टर फॉक्टर कोई बचा सकता नहीं है। डॉक्टर तो ये कहेगा कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता तो तुमको कैसे बचा सकूंगा, तुम्हारा ये सब प्रयास है वो दुखदायक बनेगा और कुछ इसका फल आएगा नहीं। अनित्य पदार्थ में विवेकी जन को रुचि करनी नहीं होती, माता पिता स्वजन आदि सर्व का प्रत्यक्ष प्रकार से सर्वथा न सब सर्व का स्वार्थ रूप संबंध, कैसा संबंध है? माता का, पिता का, पत्नी का, पति का, जो भी भाई का, बहन का, जो भी है पुत्र का, परिवार का, सभी का सर्व का स्वार्थ रूप संबंध होने पर भी यह जीव उस जाल का आश्रय किया करता है। जाल शब्द लगाया क्यों? क्योंकि जाल नहीं है, बड़ी जंजाल है जिसमें वो फंसता है, जंजाल में फंसता है उसका।
419 का एक पंक्ति है, 419 पत्रांक का एक पंक्ति है,
419
एक लाइन का पत्र।
संसार में सुख क्या है पढ़ा था आपने, स्वाध्याय में लिया था। संसार में सुख क्या है कि जिसके प्रतिबंध में जीव रहने की इच्छा करता है, ऐसा कौन सा सुख है? तो कल्पना मात्र है, कल्पना के सिवा और कुछ है ही नहीं। यही उसका अविवेक है, खुद ही दुखी होने का कार्य करता है, खुद ही दुखी होने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो दुखी होने के लिए करता है उसका अविवेक नहीं तो क्या है? अपना नुकसान नहीं देखता है वो, इसलिए विवेक नहीं है उसको। प्रत्यक्ष रीति से त्रिविधताप रूप इस संसार मालूम पड़ने पर भी प्रत्यक्ष प्रकार से त्रिविध आधि व्याधि और उपाधि तो तीन प्रकार लिया है त्रिविध में, उसका ताप लगता है जीव को, आकुलता होती है सब काम करते हुए, इस संसार उसको मालूम पड़ता है फिर भी मूर्ख ऐसा जीव, क्या बोला मूर्ख ऐसा जीव उसमें ही विश्रांति चाहता है, मूर्ख ऐसा जीव उसमें भी उसको आराम मिले, शांति मिले, ऐसी कल्पना करता है। इसकी मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। मैंने ज्ञानी के नजर में ये अनित्य पदार्थ के पीछे लगने वाले पढ़ने वाले को यानी कि नजर में मूर्ख से क्या मूर्खता से और कुछ दिखने में नहीं आता, उसको मूर्ख ही देखते हैं। समय सार में तो आचार्य भगवान उसको पशु कहते हैं, जो भूल करता है, वहां सिद्धांत ज्ञान का विषय चलता है, सिद्धांतिक भूल करता है, तो उसको पशु कहते हैं। कि मूर्ख कहना, पशु कहना, उसमें उन महात्माओं की करुणता है, कारुण्य वृत्ति है, दया है, उपकार है, वो तो करुणा करके ऐसा कहते हैं, कसाई नहीं आया, गालियां नहीं देते, वो तो कोई कसाई से नहीं बोले, लेकिन उनको नजर आता है साफ कि ये बेचारा ऐसी भूल करता है, ऐसा दोष करता है, त्रिव्यंद गति में चले जाएगा, पशु बन जाएगा। इसलिए उनको रोकने के लिए इसके पशु गति आदि में परिभ्रमण रोकने के लिए कारुण्य वृत्ति से उनके उद्गार निकलते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे माने हम, उनको भी कसाई आ जाता होगा, हम कैसे माने। कसाई तो उसको आता है जिसको कोई अपेक्षा हो और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो, उसको कसाई आता है। कसाई किसको आता है कि अपनी अपेक्षा वृत्ति फुलफिल नहीं होती है तो कसाई आएगा। लेकिन ये तो उस महात्मा ये सब निष्प्रभ है, मुनिराज उपदेश देने के लायक क्यों है, गुरु के स्थान में मुनिराज को क्यों रखते हैं, क्योंकि वो तिल तुष मात्र परिग्रह रखते नहीं थे, और जो वो परिग्रह था उनको भी छोड़ दिया था, और नई कोई व्यवस्था बिठाते थे तो वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उनको तो कोई चाहिए नहीं, अपेक्षा होती नहीं, जब जिसको कोई अपेक्षा नहीं है फिर भी वो कोई कठोर शब्द में उपदेश देते हैं, उपदेश देते वक्त कोई कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो समझना चाहिए कि ये इनकी करुणावृत्ति है, अत्यंत करुणावृत्ति है, जब ऐसी बात करते हैं। कोई लड़का 4 साल का हो और जहर खाता हो, और कोई मिठाई में उसको जहर खिलाता हो, ये पेड़ा अच्छा है, और उसमें जहर डाल दिया हो और पता चल जाए तो उसकी माँ क्या करेगी, बेटा तुमको ये मिठाई नहीं खानी है, छोड़ दो तुम। लेकिन नहीं, हमको तो खानी है, कि हम बोलते तुम छोड़ो, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, तो कहें नहीं, हमको तो खाएंगे, तो एक झापड़ लगा करके उसकी मिठाई गिरा देंगे। तो माँ ने कसाई किया कि क्या किया, यानी उसको बचाया है, उसको जहर खाते हुए बचाया है। ऐसे ये जिनवाणी है, उसको भी माँ का स्थान देते हैं, जो ज्ञानी पुरुष की वाणी है, वो तो जो अज्ञानी जिसकी मति बालक जैसी है, वो जहर को जहर नहीं समझता है, उनको छुड़ाने के लिए कभी कठोरता से भी बात करते हैं वो लोग, तो वो बात मीठी लगनी चाहिए। तो कृपालु देव ने तो आत्म सिद्धि में बहुत अच्छी बात किया है। वचनामृत वितराग ना परम शांत रसमूल औषध जे भव रोग ना, और कायर को प्रतिकूल, कायर है, हीन पुरुषार्थ वाले हैं, बहुत रागी है, जहर खाने की आदत हो गई है, उनको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो भव रोग का औषध है, भव को मिटाने वाला है। प्रत्यक्ष त्रिविध ताप रूप इस संसार मालूम पड़ने पर भी मूर्ख ऐसा जीव उसमें ही विश्रांति चाहता है। ऐसे ऐसा मूर्ख तक दिखा है कि एक आदमी का लड़का था, वो कुछ विपरीत लाइन में चढ़ गया, तो सब जो संपत्ति है वो सफा कर दिया, फिर भी वो बाप इसको ही चौंटता था, बाप की सब जो पूंजी थी साफ कर दिया। ऐशारम में फिर वो बाप को मोह नहीं छोड़ता था, मेरा लड़का मेरा लड़का, अरे तुमको तो खत्म कर दिया। मूर्खता तो ऐसी होती है जीवों की, इसके कुछ नहीं स्वजन होते हैं, तो तुम इस लड़के को छोड़ दो, ये लड़का का लाइन ठीक नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारा सब खत्म कर देगा तुमको। मेरा इकलौता लड़का है, कैसे छोड़ा जाए, मरो मरो इसके पीछे। ऐसे जीव उसमें ही विश्रांति चाहता है। ठीक है, कोई इसको भी आधार मिलेगा तो इसका भी छूट जाएगा। ठीक, तो आधार कैसे मिलेगा? हाँ, खोजी होगे तो मिलेगा, वैसे तो मिलेगा। लेकिन इतना मोह होता है उनको, खोज कैसे होगी बेचारे को, जो इतना मोह वाला होगा। हाँ, बस हमको ऐसी गलती नहीं करना है। परिग्रह आरंभ और संग ये सो अनर्थ का हेतु है। जितना भी परिग्रह है भाव में पकड़ करता है, ये अच्छी चीज है, ये मुझे चाहिए, ये ठीक है, उसको मैं मेरे पास रखूं, मुझे अनुकूल है, अच्छी लगती है, पकड़ आती है, जिस पदार्थ पे पकड़ आती है उसको कहते हैं परिग्रह। आरंभ और उसके लिए प्रयास करना, वो आरंभ है, और संग सब सत्संग, संग मैंने लौकिक जनों का संग, ये सभी अनर्थ का हेतु है। अनर्थ का मैंने दुख का हेतु है, प्रयोजन को खत्म करने का हेतु है। ये आदि जो शिक्षा है, ऐसा जो उपदेश है, उसको शास्त्र में कहते हैं उपदेश ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? उसको उपदेश ज्ञान कहते हैं। ऐसे विषय को उपदेश ज्ञान कहते हैं। क्या क्या बात आई देखो इसमें, परिभ्रमण की बात आई, परिभ्रमण से होने वाले दुख है उसको मिटाने की भी बात आई, और क्यों ये होता है कि जीव अनित्य पदार्थ में रुचि करता है, इस कारण से ये होता है, और कुटुंब परिवार सब स्वार्थ के हैं, पर कृपालु देव तो बहुत मृदु भाषा से बात करते थे, मूर्ख इतना शब्द लिया है फिर भी मृदु भाषा बहुत है। नियम सार में इसका टीकाकार मुनिराज है, पद्म ब्रह्मधारी देव, वो क्या कहते हैं कुटुंब परिवार को मालूम है? धूतारानी टोली। क्या कहें? धूतारानी टोली एम के। क्यों? क्यों अच्छे अच्छे शब्द से पुकारते हैं। गुजराती भाषा में काठियावाड़ी भाषा में गुरुदेव हूं कहता खबर है, मामणा शब्द थी तेने बोलावशे। मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई तो मोटा भाई गोल गोल ने पानी पानी एवं शब्द थी बोलावशे। कि तुम इसकी मिठास के पीछे पूरा अपना भाव और अपना आत्मा का खून कर डालेगा। तो जैसे कोई छेतरपिंडी वाला छेतरपिंडी कर जाता है, ऐसे तुम्हारे ऐसे ही हो तो अपने आप से छेतरपिंडी होती है। वो तो सब स्वार्थ के धनी है, इसका स्वार्थ नहीं पोसाएगा तो द्वेष करने में भी देर लगेगी
नहीं,
नहीं। देख लेना तुम तो, कभी ऐसा भी बनेगा संसार में। तो उस प्रकार के आरंभ परिग्रह और आत्मा का होनेपना अस्तित्वपना, आत्मा का अस्तित्वपना, आत्मा का नित्यपना, आत्मा का एकत्वपना अपना स्वरूप से अभेदपना और अनेकपना, अनेकपना मैंने गुण पर गुण भेद आदि जो गुण पर्याय के भेद हैं ऐसे अनेकपना, बंध आदि भाव, बंध आदि मैंने बंध होता है कर्म का, ये कर्म के सिद्धांत है, उदय होता है, सत्ता में रहते हैं उसकी स्थिति होती है, उनकी शक्ति अनुभाग होता है, ये सब प्रकार के बंध आदि भाव, मोक्ष वगैरह सम्मर्ग विराम मोक्ष वगैरह, और आत्मा की सर्व प्रकार की अवस्था सैद्धांतिक तौर से पदार्थ और उसकी अवस्था, इस आदि को दृष्टांत आदि से लेकर के जो प्रकारे जो प्रकार से सिद्ध किया हो साबित किया हो उसे कहते हैं सिद्धांत ज्ञान। उसका एक विभाग होता है, दो प्रकार का उपदेश होता है, एक उपदेश ज्ञान का और एक सिद्धांत ज्ञान का। उसको उपदेश बोध कहते हैं और उसको सिद्धांत बोध कहते हैं। दोनों बात जीव को कल्याण करने के लिए कही है। दो प्रकार की बात के पीछे हेतु एक है, हेतु दो नहीं है, एक जीव का कल्याण करने का इसके पीछे हेतु रहा है शास्त्रकार का। वेदांत और जिनागम ये सभी का अवलोकन प्रथम तो उपदेश ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मुमुक्षु जीव को करना चाहिए। अब कहते हैं आप वेदांत का या जिनागम का जो भी अभ्यास करो या वांछन करो श्रवण करो तो प्रथम सबसे पहले उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के बिना सिद्धांत ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर करने जाओगे तो ये क्रम विपर्यास हो जाएगा। क्या होगा? क्रम विपर्यास होगा, कारण कार्य विपर्यास हो जाएगा। जिस उपदेश ज्ञान है जो उपदेश ज्ञान है वो सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने का कारण होते हैं। उस कारण को छोड़ दोगे और कार्य को पहले पकड़ोगे तो ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। जिसको मूल नहीं चाहिए पेड़ नहीं चाहिए लेकिन फल चाहिए, मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्रम विपर्यास है, वो क्रम विपर्यास है, क्रम के विपरीत फल नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। होना चाहिए उपदेश ज्ञान, उपदेश ज्ञान बराबर होना ही चाहिए। जो भी गलती करेगा तो उसको कौन बचा सकेगा? ये नहीं होना चाहिए, उपदेश ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, फिर सिद्धांत ज्ञान पचेगा। इसके बिना सिद्धांत ज्ञान पचेगा? देखो, अपन को थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से इसका विचार करना है कि हम इधर क्यों आते हैं। अगर हमको परिभ्रमण नहीं मिटाना हो तो इधर आने के पीछे अभिप्राय क्या है देख लेना। ये परिभ्रमण मिटाने की जो भावना है और इसके लिए जो कुछ बातें समझनी है वही उपदेश ज्ञान है। ये अच्छी तरह प्राप्त हो जाए फिर सिद्धांत में प्रवेश करो आप, सिद्धांत बराबर समझ में आएगा और फिर स्थिरता आएगी। लेकिन जिसको पहले वो बात हो नहीं, होवे ही नहीं और कौतूहल वश या कोई शौक हो जानने का और सिद्धांत की जानकारी करे तो उनको तो नुकसान होगा, लाभ तो नहीं होगा लेकिन नुकसान होगा। वो सिद्धांत ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, वो उस प्रकार से विपरीत अवलंबन लेगा इस सिद्धांतों का। क्यों? क्योंकि किसी भी एक सिद्धांत से अमृत भी निकलता है अगर सदुपयोग करते हैं तो, और उसका विपरीत उपयोग किया तो जहर निकलेगा, उसमें से ही जहर निकलेगा। तो जिसको आत्मकल्याण मूल में करना है उसके लिए ये मार्ग है, ये मूल हेतु है इस लाइन में प्रवेश करने का। दूसरा कोई भी हेतु से अगर कोई यहां प्रवेश करता है तो दूसरे उन मार्ग पर चढ़ जाता है, उसको मार्ग तो नहीं मिलता है तो उन मार्ग पर चढ़ जाता है। अब तो पहले तो उपदेश ज्ञान किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या बातें आती हैं और सिद्धांत ज्ञान में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बात आती है, वो दो प्रकार बताया। अब उस विषय पर चर्चा करेंगे कि वेदांत और जिनागम ये सभी का अवलोकन, अवलोकन मैंने पढ़ना समझना सुनना, वो प्रथम तो उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही, देखो ही शब्द का प्रयोग किया है, उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही मुमुक्षु जीव को करना चाहिए। ये बात सबसे पहली स्थापित किया है, अगर वो बात नहीं होती तो और गड़बड़ होने वाली है, नुकसान होने वाला है। क्योंकि सिद्धांत ज्ञान जिनागम और वेदांत में परस्पर भेद को प्राप्त देखने में आता है। अब देखो, वेदांत में उपदेश ज्ञान अच्छा है, जिनागम में भी है, जिनागम में भी उपदेश ज्ञान बढ़िया है और वेदांत में भी उपदेश ज्ञान तो अच्छा है ही, सिद्धांत ज्ञान में अंतर है। सिद्धांत ज्ञान में अंतर है तो उपदेश ज्ञान जिसको सही है वो इस अंतर को समझेगा और जिन सिद्धांत क्या कहता है और क्यों बेटर है, क्यों प्रिफरेबल है, उसका पता उपदेश ज्ञान मिलने पर बराबर हो गया। वरना जिनागम पढ़ने वाला भी वेदांत के सिद्धांत में कभी कभी घुस जाता है, ये गड़बड़ होता है। अच्छे अच्छे अभ्यासी को ये गड़बड़ होती है, क्योंकि वेदांत जो बने निकले हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे वैरागी ऋषि मुनि हुए हैं जो जंगल में रहते थे और उन्होंने ये शास्त्र बनाए हैं। तो लोग वैरागी तो थे ही, और कोई कारणवशात उन लोगों को जिन सिद्धांत समझ में नहीं आया तो अन्यथा निरूपण कर दिया। निरूपण ही नहीं किया, दिमाग तो बहुत था उन लोगों का, बुद्धिमान थे, तो जो भी सिद्धांत उन लोगों ने प्रतिपादन किया है उनके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक भी देते हैं, वो लोग दृष्टांत देते हैं, न्याय देते हैं, और वो न्याय कैसे उपदेश में काम करता है ये सब बातें बताते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग उस लाइन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जिसको उपदेश ज्ञान की यथार्थ प्राप्ति हुई होगी उनको कहीं भूल होगी नहीं होने का कारण है कि वो जी कोई भी सिद्धांत पढ़ेगा तो मेरे आत्म कल्याण जो उपदेश का ज्ञान का विषय है उसमें उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, वो बात को मिलान करेगा। तो उस मिलान करने में, उसको बराबरी करने में कंपेरेटिव नॉलेज हो जाएगा कि कौन से सिद्धांत बेटर है। सिद्धांत तो दोनों जगह है, उपदेश भी दोनों जगह है, अब क्या करोगे? और दोनों सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले सामान्य आम जनता से बहुत बुद्धिमान ऊपर उठने वाले लोग थे, जिसमें सामान्य जन की बुद्धि उतनी नहीं है। अब सामान्य जन की क्या क्या हालत हो जाए? कृपाणु जी ने इसका रास्ता बताया। देखो भाई, पहले उपदेश ज्ञान के बराबर प्राप्ति कर लो, आत्म कल्याण के हेतु को पक्का करो, और फिर सिद्धांत ज्ञान का अवगाहन करने से आपको पता चलेगा कि सिद्धांत ज्ञान कैसे आत्म कल्याण में हम लागू कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, और सबसे बेटर कैसे हो सकता है। हाँ, वो भी चला, वो भी चला 496 कल रात को चला था कि जो मुमुक्षु जीव ग्रस्त व्यवहार में वर्तते हैं उसे तो अखंड नीति का मूल आत्मा में स्थापित करना चाहिए, नहीं तो उपदेश आदि निष्फल हो जाएगा, निष्फल
जाए
नहीं, वहां तक उसको उपदेश लागू ही नहीं पड़ेगा, सफल नहीं होगा।
हाँ
नहीं सर करेगा, सही बात
है।
सुनेंगे तो भी वो निष्फल हो जाएगा,
शत्रु हो जाएगा,
क्या फायदा? हाँ फायदा तो नहीं है, नुकसान हो सकता है, हो सकता है, बराबर है। अब आचरण में ऐसी बात है, आचरण का जो प्रकरण है उसका मूल है अभिप्राय और श्रद्धा, तो वो भी एक आचरण का ही विभाग है। श्रद्धा जमना, अभिप्राय बदलना, ये श्रद्धा ज्ञान का आचरण हुआ, और व्यवहार प्रवृत्ति हुई वो बाह्य आचरण हुआ। तो बाह्य आचरण में जीव कब आएगा कि उसका श्रद्धा ज्ञान उस पर जमेगा तब, इसके पहले जो बाह्य आचरण में आएगा तो भी टिक नहीं पाएगा, टिकेगा नहीं। जो श्रद्धा में लेगा वो बाह्याचरण के लिए प्रयत्नवान होगा, प्रयत्न में सफलता, आंशिक सफलता मिलना, पूरी सफलता मिलना वो अलग प्रकरण है, वो योग्यता अनुसार होता है। परंतु जिसको श्रद्धा हुई जमी, जिसका अभिप्राय बदला, उसका आचरण के लिए प्रयास हुए बिना रहेगा नहीं। आचरण के लिए प्रयास होता है उसी को ही श्रद्धा ज्ञान जमी है ऐसा बोलने में आता है, क्योंकि ये कारण कार्य का संबंध है दोनों के बीच में। जिसको कारण हो उसका कार्य के लिए प्रयास होगा ही होगा, तृषा लगी है वो पानी खोजेगा ही खोजेगा, ऐसी बात है। और वहां तक लिखा है कृपालु देव ने कि सांगोपांग न्याय संपन्न रहने में प्राण जाए ऐसी दशा आए जा जाए तो भले आ जाए, मुमुक्षु का उस वक्त वैराग्य और बढ़ना चाहिए, इतने इसकी दृढ़ता, श्रद्धा ज्ञान की दृढ़ता उतने हद तक होवे तो प्राण जाए वहां तक वो अपना नीति न्याय को छोड़ेगा नहीं, ऐसा आचरण में वो आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है वो ज्ञानियों ने, तो सब बातें कही है, जिसको जितनी जचे रुचे उतनी अलग बात है, ज्ञानियों ने तो कोई बात छोड़ी नहीं है। ज्ञानी ने सब कुछ किया है, हमने करने का बाकी रखा है, बाकी कहा तो सब कुछ है। तो कहते हैं कि वेदांत में और जिनागम में सिद्धांत ज्ञान में परस्पर तफावत है, अंतर है, ऐसा देखने में आता है। और यह प्रकार देख करके मुमुक्षु जीव को शंका प्राप्त होती है, अंदेशा होता है, क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े लोग होंगे, नामी लोग होंगे, और आज भी इनके फॉलोअर्स कम नहीं है, बहुत है। तो एक सामान्य बुद्धि में ये बात आती है कि इतने अच्छे अच्छे समझदार लोग हैं तो क्या सब मूर्ख थोड़े हैं, सभी भूल करते हैं क्या? ये बात हमको तो समझ में नहीं आती कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग ऐसी भूल करे, कैसे तो शंका हो जाएगा तो फिर जिनागम सच्चा क्यों? जिनागम में जो बात कही है वो कैसे सच्ची, और वो कहते हैं वो सच्ची क्यों नहीं, ये शंका में आ जाएगा। उपदेश ज्ञान प्राप्त सही अच्छी प्रकार से नहीं हो तो सिद्धांत ज्ञान में शंका हुए बिना रहेगी, कहीं ना कहीं शंका पड़ेगी। वो तो एक दृष्टांत दिया है, बहुत सी ऐसी बात है जैसे क्रमबद्ध पर्याय, हमारे जिनेन्द्र सर्वज्ञ होते हैं, एक समय में तीन काल तीन लोक का उसको ज्ञान होता है, तो फिर जीव पुरुषार्थ करे वो बात कहाँ रही, वो तो जो पर्याय जिस समय में होने वाली है वही होगी, तो पुरुषार्थ कैसे रहेगा? हमारे लोगों में ये चलता है, ये शंका प्रति है, तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ में शंका होगी, ये शंका क्रमबद्ध पर्याय में नहीं है, ये शंका सर्वज्ञ में होगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्यों हुई ये शंका? अच्छे अच्छे बुद्धिमान को ये शंका पड़ती है, क्यों हुई? कि उसने उपदेश ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है इसलिए हुई है। उपदेश ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त करने के पहले सिद्धांत ज्ञान को स्पर्श कर लिया तो गड़बड़ होगी होगी और होगी ही।
तो अपनी परंपरा
वहां तक सिद्धांत सिद्धांत का बोध मर्यादित रूप से देना पड़ता है, क्यों? कि उसमें भी इस उपदेश ज्ञान में बिल्कुल सिद्धांत का कोई अंश नहीं आवे ऐसा नहीं बन सकता। देखिए यहाँ उपदेश ज्ञान का जो लिया ने कि अनित्य ऐसे पदार्थ में विवेकी जन रुचि नहीं करता, तो पदार्थ की अनित्यता वो सिद्धांत ज्ञान का विषय है। पदार्थ अनित्य है वो सिद्धांत ज्ञान का विषय है, तो उपदेश देते हुए सिद्धांत बीच में आए ही नहीं, ये असंभवित है। और सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए उपदेश का विषय बीच में आए ही नहीं, वो संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं या अपेक्षित है, सापेक्ष है कि अकेला एक का प्रतिपादन करो तो ये बन सकता है, ये हो सकता है। वो करना होगा, वो तो वो स्टेज बाय स्टेज होता है। नहीं वो तो बोध, बोध तो ज्ञानी देते हैं, बोध कौन देते हैं, ज्ञानी देते हैं। तो ज्ञानी को लक्ष्य में होता है कि बोध कैसे देना, वो ज्ञानी को लक्ष्य में होता ही है। तो किस जीव को वो कहाँ खड़ा है, कैसी योग्यता में खड़ा है, ये सब परिज्ञान उनको आ जाता है। और जिसको जो दवाई की जरूरत होती है वही दवाई देते हैं। दृष्टांत दिया है चोडरमली ने मुख्य प्रकाशक में कि देखो बुखार आया किसी को, बुखार तो बुखार है लेकिन बुखार गर्मी की सीजन में सनस्ट्रोक लगने से आता है, बहुत ताप लगने से बुखार आता है, और ठंड की सीजन में सर्दी लग जाने से, ठंडी लगने से बुखार आता है। बुखार तो बुखार है, और इसका उपचार क्या करना है? तो ठंडी में 105 डिग्री ताप हो गया, बुखार हो गया, तो उसको बर्फ लगाना पड़ता है। लेकिन जैसा डाउन होने लगा 104 103 तो बर्फ बंद करना पड़ेगा, वरना उसको सर्दी हो जाएगी। सर्दी तो आई तो मर जाएगा। तो उसको बर्फ घिसने के बाद भी उसको दवाई गरम गरम देनी पड़ती है। जिसको सर्दी से बुखार आया है उसको पिलाने के लिए तो गर्म दवाई देंगे और ऊपर से तो बर्फ भी लगाएंगे, तो दो प्रकार का उपचार हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी ऐसा भी रोग होता है कि दो प्रकार का भी उपचार लागू करना पड़ता है। अब कितने प्रमाण में, किस टाइम में, किस, ये सब ज्ञानियों का, डॉक्टरों का विषय है, ये हम लोग सामान्य आदमी का विषय नहीं होता। ये बात बहुत अनुभव की होती है ज्ञानियों के, और उसमें उन लोगों की मास्टरी होती है, उसमें दूसरे का काम नहीं है। तो कभी कभी लोग को ये लगता है कि ज्ञानी ऐसा उपदेश क्यों देता है, वो ज्ञानी ऐसा उपदेश क्यों देता है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो उपदेश लेने लायक है, हम उपदेश देते हैं उसको उपदेश देना वो हमारा काम नहीं है। वरना ये बात हो जाएगा कि उपदेश देने वाले को भी हम उपदेश दे देंगे कि ऐसा क्यों करते हैं आप, ऐसा उपदेश क्यों देते, ये तो बड़ी भूल हो जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सी बातें हैं इसमें, और उसी कल चर्चा करेंगे, इस विषय में समय हो।